जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सूरत जो है ये आपको बहुत सारे डूज एंड डोंट्स बताती है, और इसको ये ऐसे नहीं है कि आप बस सिर्फ सुन लें, ये नोट डाउन करने के लिए बहुत जरूरी है कि बहुत सारे इसमें पॉइंट्स ऐसे आएंगे जो आपको लिख लेने चाहिए ताकि आपको याद रहे। लास्ट टाइम हमने काफी इंपॉर्टेंट अहकामात पढ़े थे, आप देखती हैं कि थोड़ी सी चंद ही आयात के अंदर कितना कुछ आपको बता दिया गया, वादों की पाबंदी का, आप क्या किस हालत में खा सकते हैं और किस हालत में आप शिकार नहीं कर सकते या उन्हीं उन्हीं हलाल चीजों को नहीं खा सकते, कौन सी चीजें हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने शायर करार दिया कि उनकी हुर्मतों को पामाल ना किया जाए, वो इज्जत की चीजें क्योंकि वो शायर अल्लाह है, और ना सिर्फ वो चीजें जो यहाँ बताई गई हैं आपको, उनके अलावा भी बहुत सारे शायर अल्लाह हैं जो अल्लाह की निशानियां हैं जिनको देख के अल्लाह याद आ जाता है, तो उनकी इज्जत रहने दे, उनकी इज्जत पामाल ना करे। फिर हमने देखा कि अगर दुश्मन ने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका तो तुम नहीं अब उनके साथ वही ज्यादती करो, यानी टिट फॉर टैट ना करो, उसने मेरे साथ ये किया मैं भी उसके साथ ये करूंगी, ये नहीं करना। और ताआवनु अलल बिर्री व तक्वा और वला ताआवनु अलल इथ्मी वल उदवान, ये तो मैंने आपको कह दिया था कि ये बात तो आप कहीं लिख के लगा लीजिए क्योंकि हर जगह पे जिंदगी में ये आपको काम आएगी कि आपने किसी के साथ हेल्प करनी है या किसी के साथ किसी चीज में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना, ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि वो मेरी दोस्त है या वो हमारे रिश्तेदार हैं या वो हमारे नेबर हैं, बल्कि एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर तो बिर और तकवा है तो चाहे काफिर है, चाहे अजनबी है, चाहे दुश्मन है, आपने उसके साथ ताबुन करना है। अगर इत्मर उदवान है तो चाहे मेरी सकी औलाद है और वो मुझे कोई क्या काम को ऐसे को करने को कह रही है या शामिल होने को कह रही है या उसमें ताबुन के लिए कह रही है, सपोर्ट चाहती है, पार्टिसिपेशन चाहती है, लेकिन वो है अल्लाह ताला की नाफरमानी की बात, गुनाह की बात, कोई ज्यादती का काम है किसी के साथ, तो मैंने उसमें ताबुन नहीं करना। और ताबुन की भी मैंने आपको डिफरेंट बताई थी कि ताबुन भी सिर्फ ये नहीं होता कि मैं उसका कोई काम करके दे दूं, ये ताबुन है, बाज दफा किसी के साथ किसी चीज के अंदर शामिल हो जाना, अपना हेड काउंट उसमें दे देना, यानी सिर्फ आप एक जगह बैठ ही गए हैं वो भी आपका ताबुन है। आप किसी जगह में अपनी शमूलियत दे के अपने आप को दाखिल करके वहां पर आप उसमें ताबुन ही दे रहे होते हैं, या आप बाज दफा किसी की तारीफ करके उसको ताबुन दे रहे होते हैं कि भाई तू बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तू करता रहे, आप किसी को मैरी क्रिसमस कह के ताबुन दे रहे हैं उसके गुनाह के अंदर कि हाँ भाई तुम लोग ये कर रहे हो तो ठीक ही कर रहे हो, तभी आप उसको कह रहे हैं ना, आप उनकी उन चीजों के अंदर वैसे ही उनको, आप सोचते हैं हम इनको सिर्फ ग्रीट कर रहे हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, ग्रीट करना भी दूसरे को उसका ताबुन है, आप इसका मतलब आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब है कि आप इसको एंडोर्स कर रहे हैं ना कि मैं अपनी मोहर भी लगा देती हूँ इसमें कि हाँ भाई आपका काम वो आपके लिए ठीक है, हमारे लिए ठीक नहीं होगा लेकिन आपके लिए वो ठीक है, आप जो कर रहे हैं यानी आप खुद नहीं कर रहे लेकिन आप एक तरह से ये कह रहे हैं कि आप ठीक कर रहे हैं, आप करते रहिए, आपका काम सही है, आपके लिए सही है, जबकि हम कहते हैं नहीं ये काम ही गलत है, ये काम ही सही नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके अंदर जरा बराबर भी ताबुन देना, जबकि अल्लाह ताला का यहाँ पे हुक्म है ताबुन करो नेकी में और भलाई में, तकवा के कामों में, नहीं ताबुन करना तुमने ऐ ईमान वालों, बार बार ईमान वालों क्या के कहा जा रहा है, गुनाह में और ज्यादती के काम। तो वो अब इतने ही हमारे कोई प्यारे हैं या जहां पे दोस्तियां हैं वहां पे कोई हमें गुनाह पर बुलाता है तो हम कहते हैं कि नहीं ये क्योंकि हमारे अजीज हैं तो नाराजगी हो जाएगी तो हम ताबुन करने के लिए खड़े हो जाते, जबकि अल्लाह ताला का ये हुक्म है। इसी तरह नेकी के कामों में कभी पीछे ना रहे ताबुन करने से, नेकी का काम है तो फिर घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, अपनी जितनी सपोर्ट दे सकते हैं उतनी दीजिए उस काम में, चाहे वो आपके जानने वाले नहीं भी हैं, हम कहते हैं हमें क्या करते फिर हैं खुद ही, आप जितना कर सकते हैं चाहे बोल के चाहे अपने कोई किसी को आगे पहुंचा के नेकी के कामों में ताउन कीजिए। मिसाल के तौर पे आपका ये क्लास का काम है, आपका ये कुरान पढ़ने का काम है, इसमें ताउन आपका कैसे हो सकता है? ये भी एक नेकी का काम है, इसमें आपका ताउन ये हो सकता है, आपका हिस्सा ये डल सकता है कि आप आगे पहुंचाइए बात को, जहां बैठे वहां पे लोगों को इनवाइट करें कुरान की तरफ। ये नहीं है कि उनको हमें क्या, हम वो करते रहेंगे, कहीं से भी उन्होंने करना होगा, मैं क्यों कहूं? नहीं, इसको ये है नेकी में ताउन कि आपकी जितनी भी इस्तात है, आप जिधर भी बैठे हैं उधर लोगों को आपने इस भलाई की तरफ बुलाया, ये आपने अपना ताउन डाल दिया इसके अंदर, ये आपकी सपोर्ट है, ये आपकी हेल्प है। ठीक है, जिस काम में भी आप ताउन करेंगे, याद रखिए, चाहे वो नेकी का है चाहे बुराई का, आपका हिस्सा उसमें लिख लिया जाएगा, चाहे वो एक बात बोल के क्यों ना हो। बुराई के लिए भी सेम है, नेकी के लिए भी सेम है, आपका हिस्सा लिख लिया गया। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। और फिर हमने देखा कि कौन कौन सी चीजें हमारे लिए हराम है खानी, और फिर उसके बाद हमने बहुत अहम बात ये देखी कि दीन मुकम्मल हो चुका है, ना सिर्फ मुकम्मल हो चुका है बल्कि परफेक्शन के साथ अल्लाह ताला ने आपको अता कर दिया। आप बताइए, जो चीज मुकम्मल हो चुकी हो, क्या उसमें किसी एडिशन की जरूरत होती है? फिर हम क्यों इधर उधर देखते हैं कि आप कोई हमें कुछ और बता दे जो दीन ने नहीं बताया, कोई नई से नई बातें हमें बताए तो फिर हमें चैन आएगा? नहीं, हम जब दीन का बता दिया गया मुकम्मल है तो हमें इसके ऊपर मुतमईन होना चाहिए और नई नई चीजें तलाश नहीं करनी चाहिए। फिर हमने इसके बाद ये भी पढ़ा कि अहले किताब का खाना, यानी मुसलमान, यहूदी या ईसाई, किसी ने भी अगर जानवर जिबा किया है तो आप खा सकते हैं। अहले किताब ही है वो, चाहे उस जमाने के थे चाहे आज। उस जमाने में भी शिरकी करते थे, उस जमाने में ऐसे नहीं था कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं कहते थे या कुछ, लेकिन अहले किताब कह दिया गया, उसके अंदर सिर्फ सिर्फ यहूदी और ईसाई आते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी का भी जबिया, कोई हिंदू है, बुद्धिस्ट है, कोई कोई एथिस्ट है, उसका जिबा, वो चाहे जिबा कर रहा है हाथ से और कह भी रहा है कि ठीक है मैं आप जो कहते हैं वो बोल देता हूं इसके ऊपर, आप बिस्मिल्लाह कहना चाहते हैं, आप अल्लाह अकबर कहना चाहते हैं, मैं बोल देता हूँ, और हमारे ही तरीके से उसको जिबा करता है, उसका खाना जायज नहीं है। तो सिर्फ ये नहीं है कि जबीहा खाना है, जो जिबा कर रहा है शख्स उसको भी देखें कि वो कौन है। बात समझ आ गई? तो ये उस सेंस में है, बाकी गोश्त के अलावा सबके ही खाने जायज हैं, दाल है, रोटी है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स जो भी हैं, अब वो बाकी सबके खा सकते हैं, लेकिन गोश्त की हवाले से ये बात बताई गई, सिर्फ अहले किताब का जिबा किया हुआ आप खा सकते हैं, बाकी किसी का नहीं। जो उन्होंने भी जिबा किया हो, अगर वो अपना दीन छोड़ चुके हैं और वो उन्होंने अपने जिबा के तरीके जो हमारे वाले ही हैं वो छोड़ दिए हैं, तो हम फिर उनका भी नहीं खा सकते। और सेम गोज फॉर अ मुस्लिम। देखिए, अगर मुसलमान भी, चाहे वो मुसलमान है, अगर वो जिबा का तरीका जो इस्लाम ने बताया उससे मुताबिक जिबा ही नहीं कर रहा, तो हम तो उसका भी नहीं खा सकते जिबा किया हुआ। अगर वो भी झटका दे रहा है, अगर वो भी मार रहा है कोई शौक दे के, को किसी और तरह से, तो वो भी नहीं हम खा सकते। तो इसमें बात ये नहीं है सिर्फ कि दोनों ही शराइत जरूरी है, करने वाला कौन है, वो मुसलमान है, यहूदी है या ईसाई है, तो फिर ठीक है। तरीका कौन सा है, वो मुसलमान करे, यहूदी करे, ईसाई करे, तरीका सेम ही है कि अल्लाह का नाम भी लिया जाए और इस तरह पूरी गर्दन भी नहीं काटी जाए, कुछ रगे काटी जाए। ठीक है, और फिर हमने ये देखा निकाह किन औरतों के साथ हो सकता है। आज की जो आयत पहले सबसे शुरू हो रही है वो आयत कहलाती है आयते वुजू या आयते तयम्मम। ठीक है, क्योंकि इसमें वुजू का भी अहकाम है और तयम्मम के भी। और इसके बाद हम आज पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने मीसाक लिया था पहले लोगों से भी, यहूद नसारा से भी, और हमसे भी एक मीसाक लिया हुआ, और अगर कोई मीसाक को पूरा करता है तो उसको क्या मिलेगा, और मीसाक को नहीं पूरा करता तो इसको छोटी बात ना समझो। फिर जो होगा ना तुम्हारे साथ वो भी फिर यहाँ पे बता दिया गया कि क्या होगा। और आप उस आईने में आज अगर उम्मत मुस्लिमा का हाल देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सेम सिचुएशन है फिर हम शिकायतें करते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसे हो रहा है, हम क्यों दुनिया में ख्वार हो रहे हैं, हमारे साथ क्यों ये मसले मसाइल हैं। तो क्यों है, इसका जवाब आज आपको मिलेगा, ठीक है? इंशाल्लाह देखते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے اذا قمتم جب کھڑے ہو تم الى طرف الصلاه نماز کے اچھا قم تم ہے نا تو قامہ ہوتا ہے کھڑے ہونا مگر جب اس کے بعد الى آ جائے تو کسی کام کے لیے کھڑے ہونا یعنی کسی کام کا ارادہ کرنا کوئی قصد کرنا सिर्फ ऐसे ही नहीं खड़े होना वरना तो ऐसे ही हम कहीं पे भी खड़े हो तो क्या हमेशा हम यही करेंगे नहीं इरादा करना किसी काम का और वो कौन सा इरादा है इला सला नमाज का इसका मतलब है जब भी आप नमाज का इरादा करेंगे नमाज पढ़ने के लिए खड़े होंगे तो क्या करना आपके लिए जरूरी है तो नंबर वन फगसिलु वुजूहकुम तो धो लो अपने वजूह को वज की जमा वजूह वज कहते हैं चेहरे को और वज शुरू कहां से होता है जहां ये आपके बाल खत्म होते हैं सर के वहां से यानी माथा शुरू होता है वहां से लेके आपकी चिन के नीचे तक ये सारा वज है आपका ठीक है तो आप चेहरे को धो लें वा और अईदियकुम और अपने हाथों को अब हाथों को कहां तक धोना है रिस्ट तक धोना है आगे बाजू तक धोना है कहां तक इलल मराफिक मराफिक तक कोहनियों तक यानी आपने ये हाथ के नाखून से लेकर कोहनियों तक कोहनियों समेत तक का मतलब ये नहीं कि कोहनी को छोड़ देना कोहनियों समेत आप उसको धोएं वमसहु और मसा करो बिरूसिकुम अपने सरों का और सर का मसा यानी सर के ऊपर हाथ पहना ये अब आपको पता चल रहा है यहां से कि ये है फराइज वुजू वुजू के फराइज ये कहलाते हैं वा और अर्जुलकुम और अपने पांव को इलल काबैन टखनों तक यानी टखनों समेत अपने पांवों को धो लिया करो यानी जब पांव है तो इनको भी धोना है अब यहां पर एक थोड़ा सा आयत को समझने में एक जगह पर थोड़ी सी जरूरत है कि हम इसके ऊपर जरा ज्यादा गौर से देख लें और वो है कि जब हम पढ़ रहे हैं वमसहु भी रुसिकुम व अर्जुलकुम और मसा करो सरों का और पांव का काबैन तक तो हम क्या मतलब मसा सर का भी करना और पांव का भी करना नहीं ये नहीं है बात देखिए यहां पे हमारे यहां दो मकाते बेफिक्र इसी आयत से बने हैं एक है अहले सुन्ना वल जमा और दूसरा है अहले तशियो यानी शिया हजरा अहले तशियो यहां पे पढ़ते हैं अर्जुली को ली ये अब आज ये बात इसको समझ लें ताकि आपको थोड़ा से थोड़ी डेप्थ पता चले अर्जुली कुम पढ़ते हैं अगर हम अर्जुली कुम पढ़ेंगे तो फिर वो रुउसिकुम के साथ आता है फिर है वमसहु बिरुउसिकुम व अर्जुलिकुम ठीक है अर्जुलिकुम फिर आएगा कि मसा करो सरों का और पैरों का और वो लोग पैरों का भी मसा ही करते हैं ठीक है जबकि अहले सुन्ना वल जमा ये पढ़ते हैं अर्जुलकुम अर्जुलकुम पीछे कहां है रुउसिकुम के साथ नहीं है उसका अतब पढ़ा है जिनको थोड़ी सी ग्रामर आ रही है वो आती है तो वो ये बात समझ सकते हैं जिनको नहीं समझ आए कोई मसला नहीं है बस आप इतनी बात समझ लें अर्जुलकुम किसके साथ जा रहा है रुउसिकुम के साथ नहीं जा रहा उसका अतफ पड़ा है वुजूहकुम अईदियकुम अर्जुलकुम ये सारे इकट्ठे हैं फिर अर्जुलकुम को बाद में क्यों लाया गया उनके साथ ही रखा जाता फहसिलु वुजूहकुम व अईदियकुम मुराफिक व अर्जुलकुम इलल काबैन फिर ऐसे होना चाहिए था फिर उसके बाद वमसहु बिरुउसिकुम होना चाहिए था लेकिन यहां पर वुजू की तरतीब बताई गई है तरतीब के साथ क्योंकि वुजू में तरतीब जरूरी है पहले आपने चेहरे को करना है फिर उसके बाद बाजू फिर उसके बाद आप मसा करते हैं फिर पैरों की तरफ आते हैं तो लेकिन जो धोने के साथ है वो ताल्लुक है वुजूहकुम अईदियकुम अर्जुलकुम ये सारे इकट्ठे हैं ठीक है और मसा सिर्फ रुउसिकुम का है देखिए यहां पे सिर्फ जेर है, बाकी सारे इसका अतक उनके ऊपर पड़ रहा, समझ आ गई बात। तो यहां से उन्होंने ये लिया, अब हम कैसे फैसला करें। अब ये किरात भी है, अर्जुला कुंभ की भी किरात है, अर्जुली कुंभ की भी किरात है, तो हमें क्या पता कौन सी सही है, क्या पता वो ही सही हो। फिर हम कहां से देखें। देखें, याद रखिए, कुराने पाक अमल किसने करके दिखाया, किधर से आप देखते हैं कि हम अपनी अकल से नहीं सोचेंगे कि भाई ये करें या ये करें, नहीं, हम अमल देखेंगे फिर नबी अलैहिस्सलाम को, और तवातुर के साथ। तवातुर का मतलब क्या होता है, यानी इतनी कसीर तादाद में अहादीस हैं इस चीज पे, तवातुर के साथ जब कोई हदीस आ रही होती है ना, उसका मतलब होता है कि इतने लोगों ने उसको रिवायत किया कि उन सब का झूठ पे मुत्तफिक होना नामुमकिन है। ठीक है, तो जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी जिंदगी में पैरों को मसा नहीं किया, हमेशा पैरों को धोया है, अनलेस उसके ऊपर जुराबे हों। बात समझ आई, फिर तो मसा ही करना, फिर तो इसमें सबका इत्तेफाक है ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब नहीं है सॉक्स, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पैरों को धोया। अब इसमें देखते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बयान करते हैं कि एक सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए थे, फिर आपने हमें पा लिया इस हाल में कि हम नमाज के लिए वुजू कर रहे थे, तो जल्दी में हम अपने पैरों पर गीला हाथ फेर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़े बुलंद फरमाया 3 दफा कि इन एड़ियों के लिए जहन्नुम है, हलाकत है, जो खुश को रहें उन एड़ियों के लिए हलाकत है, यानी यानी अगर कोई पैर का हिस्सा खुश्क रह गया तो वो आग में जलेगा। तो बाज दफा हम ऐसे ही पकड़ के पानी ना गीला हाथ ही फेर देते हैं, नहीं धोना है, ठीक है, मसा नहीं करना, धोना है। तो इसलिए इस चीज का समझना, और आपको पता चल गया धोना कहाँ से आया, सही है ना। अच्छा, अब अगर किसी ने मसा करना है, तो मसा किस सूरत में सिर्फ होगा, वो जब आपने जुराबे पहनी होंगी, जुराबे पहनी होंगी तो तब आप मसा करेंगे। आज इसको भी जरा देख लेते हैं, क्योंकि ये भी हमें बहुत सारे लोगों को इसकी समझ नहीं होती, और इतनी अल्लाह ताला की तरफ से एक आसानी है और उससे फायदा नहीं फिर उठा पाते। देखिए, मसा कब कब हो सकता है, मसा तब हो सकता है जबकि आपने जुराब पहनी हो, या आपकी कहीं पट्टी बंधी हुई है और पट्टी उतर नहीं सकती, मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे किसी की हड्डी टूट गई है, प्लस्तर चढ़ा हुआ है, अब वो उसको उतार के तो नहीं नीचे से धो सकता बाजू को या टखने पे, तो उस वक्त क्या आप कर सकते हैं, आप मसा कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर ही बस हाथ फेर लें। ठीक है, अब मसा जुराबों पे भी कर सकते हैं इसी तरह। अब सर्दियां हैं, आप या आप कहीं सफर पे जा रहे हैं, वो आपने देखा होगा जहाजों के अंदर टॉयलेट्स इतने छोटे होते हैं कि वहां पे अगर वुजू करना चाहें तो पैर तो आप सिंक में नहीं रख सकते कम से कम। अब उस वक्त अगर आप जुराबे पहन के घर से गए हैं, तो आप अब मसा कर सकते हैं अपने पैरों पे, लेकिन मसा के लिए शर्त है, और वो शर्त क्या है कि आपने जो जुराबे पहनी है वो वुजू की हालत में आपने पहनी हो, पहले वुजू किया है आपने फिर आपने वो जुराबे चढ़ाई है। ठीक है, अच्छा, लेकिन पट्टी का क्या है, पट्टी जब आपने की तो वो पट्टी का जरूरत नहीं है कि आपने उससे पहले वुजू किया था तो फिर पट्टी की है, वुजू सूरत कौन देखेगा। ठीक है, वो आप उसके ऊपर ही कर सकते हैं। इसी तरह किसी ने पगड़ी पहनी हुई है, या किसी ने स्काफ ऐसा लिया हुआ कि अब मर्द है वहां पे वुजू कर रही है, स्काफ तो नहीं उतार सकती, या स्काफ ऐसे बंधा हुआ है कि उसको उतारना बड़ा मुश्किल है, तो फिर उसके ऊपर भी आप मसा कर सकते हैं। लेकिन पैरों का सिर्फ ये है कि वो आपने जुराबे पैरों को धो के यानी वुजू करके पहनी हुई है, वुजू की बगैर पहनी हुई है अगर जुराबे तो फिर उसके ऊपर मजा नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, अब दूसरे ये कि जो आपकी जुराबे है ना, वो आपके टखने को कवर कर रही होनी चाहिए। आजकल कई जुराबे मिलती है ना जो यानी एंकल्स को कवर नहीं करती, उससे नीचे होती है, वो फिर जुराब उसके ऊपर नहीं आप मसा कर सकते। जुराब ऐसी होनी चाहिए जो टखने के ऊपर तक आ रही हो, और जुराब इतनी भी वो बारीक वाली ना हो कि जो जिसमें बिल्कुल आप देखते हैं ना, एक बिल्कुल बारीक होती, यानी जो पैर को कवर कर ले, ऐसी जुराब होनी चाहिए। और इसके अंदर क्या बातें थोड़ी सी आपको और बताना चाहूंगी। हाँ, अगर आपने जुराब उतार दी है तो बाज इसमें इख्तलाफ है उलमा का। एहतियाती बात यही है कि आप दोबारा फिर वजू करें जब अगली आपने नमाज पढ़नी है। ठीक है, आपने जब वजू करके एक जुराब पहनी है तो मसा तभी करेंगे जब आपने पहन के ही रखी है। सही है ना, पहन के ही रखिए फिर उसको। तो अब आप कितनी देर तक उसके ऊपर मसा कर सकते हैं? जो मुकीम है, यानी आप मुकीम से मतलब है, मतलब सफर में नहीं है, जो मुकीम है वो 1 दिन और 1 रात कर सकता है, और जो मुसाफिर है वो 3 दिन और 3 रात कर सकता है। ठीक है, अब ये 1 दिन और 1 रात की मुद्दत कैसे शुरू होगी, कब शुरू होगी? मिसाल के तौर पे आज अगर मैंने फजर पे अपनी जुराब पहनी है तो क्या कल फजर तक मैं मसा करके ही वजू कर सकती हूँ, या इससे भी आगे कर सकती हूँ? तो इसके पर मैं आपको बता दूं, ये भी एक शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो गौर से सुन लीजिए इस बात को। मसा का वक्त तब से नहीं स्टार्ट होता जब आपने सॉक्स पहनी है वजू करके। मसा का वक्त स्टार्ट होता है उस वक्त से जब आपने पहला वजू मसा के साथ किया, पैरों के पर मसा के साथ जब आपने पहला वुजू किया तब से आपका मसा का टाइम स्टार्ट होगा। ये जो मैंने 1 दिन और 1 रात का बताया ना, ये तब से स्टार्ट होगा। मिसाल के तौर पे मैंने आज फजर पे वुजू किया और मैंने जुराबे पहन ली, उसके बाद मैंने पहनी रखी, जोहर भी पढ़ ली, असर भी पढ़ ली, मुझे वुजू करने की जरूरत ही नहीं थी, तो मैंने उसी फजर वाले वुजू के साथ ही जोहर भी पढ़ ली, असर भी पढ़ ली। मगरिब के वक्त जाके मैंने नया वुजू किया। ठीक है, अब मैंने पहली दफा मसा किया है सॉक्स के ऊपर, तो यहां से मेरा मसा का टाइम स्टार्ट होता है। बात समझ आ गई? और अगर मिसाल के तौर पे मैंने इससे पहले जितनी नमाजें पढ़ी हैं सेम ही वुजू के साथ पढ़ी हैं, तो वो यानी उसमें नहीं होगा काउंट। अब नेक्स्ट डे मगरिब तक मैं मसा करके पढ़ सकती हूँ सॉक्स पे। समझ आई बात? क्योंकि आज मैंने मसा स्टार्ट कब किया था, मगरिब पे किया था ना, तो मैं नेक्स्ट डे मगरिब तक वो करूंगी, नेक्स्ट डे फजर तक नहीं, नेक्स्ट डे मगरिब तक। और सेम गोज फॉर जो मुसाफिर के 3 दिन का आपको बताया। तो इस लिहाज से अच्छा, अब प्रॉब्लम ये होती है थोड़ी सी कि हमारे दिमाग इतने भूल का शिकार रहते हैं। मैं तो यही करती हूँ कि जिस वक्त मैंने पहनी होती है मैं उसको याद रखती हूँ। अक्सर यही होता है कि फजर के वक्त ही बस एक दफा पहन ली तो अगले दिन फजर के वक्त मैं उतार देती हूँ। वैसे भी चेंज करनी होती है क्योंकि इंसान को भूल ना जाए, डर लगता है ना कि किसी दिन तो आपने फजर पे वजू किया और उसके बाद आपको जुहर पे करना पड़ गया, आप किसी दिन असर तक आपका चला गया था, आपने असर पे मसा किया, किसी दिन आपने मगरिब पे मसा, तो रोज रोज का याद रखना मुश्किल होता है। तो लेकिन आपको रूल पता होना चाहिए। अब आपने प्रैक्टिस जिस तरह से भी करनी, याद रखने की, वो एक अलग बात है, मगर रूल आपके जहन में हो ताकि कभी भी ऐसा हो तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े कि कहां तक आपको अलाउड है मसा करना। समझ आई बात? तो अब हमें ये पता चल गया, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि आपने वो कब तक आपकी मसा की। फिर मसा करना कैसे? मसा करने के लिए पांव के जो ऊपर का हिस्सा है, यानी आपके सॉक्स का ऊपर का हिस्सा, उस साइड पे अपने हाथ फेरते हुए काबईन तक लेके जानी है। ठीक है, और यानी टखने के ऊपर तक लेके जाएं, वो सामने से, नीचे से और साइडों से नहीं लेके जाने। ये सुन्नत का तरीका नहीं है, इसीलिए हजरत अली ने फरमाया ना कि अगर दीन जो होता वो अकल की बुनियाद के ऊपर होता तो फिर लोग ये सोचते कि फिर तो नीचे से साफ करना चाहिए, नीचे मसा करना चाहिए, ऊपर मसा करने की क्या जरूरत है। लेकिन दीन इंसानों की अकल या राय पे नहीं है, दीन वो है जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि मसा किस तरह करना है। अगर आपकी सॉक्स में सुराख है तो बेहतर है कि आप उसके ऊपर मसा ना करें, क्योंकि देखें अब किसी का सुराग बड़ा है, आप फिर ये ना हो कि यानी, क्योंकि मोजा वो है, सॉक्स वो है जो कवर करे आपके पूरे पांव को। सही है ना? अच्छा, जब मसा की मुद्दत खत्म हो गई वुजू भी खत्म हो गया। सही है, मसा की मुद्दत खत्म हो गई वुजू भी खत्म हो गया। अब आपने आपको पता चल गया ना किस किस चीज पे आप मसा कर सकते हैं, पगड़ी पे कर सकते हैं, औरतें अपने स्कार्फ आजकल ऐसे बांध लेती हैं उसमें इतनी पिन्ने होती हैं कि वो तो उतारते उतारते ही मेरे ख्याल नमाज का टाइम गुजर जाए। तो इतने ऐसे स्कार्फ हैं या पट्टी है या सॉक्स हैं तो आप इंशाल्लाह इनके ऊपर मसा कर सकते हैं, लेकिन नेल पॉलिश पे मसा नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हटाना ही जरूरी है। सही। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं हम, कि हमने ये बात को डिस्कस कर लिया। अब यहां से हमें पता चल गया कि वुजू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए कि वुजू के बगैर नमाज नहीं है। यहां से पता चल गया हमें, इस आयत से कुरान की पता चल गया, जब भी आपने नमाज के लिए खड़े होना आपका वुजू, आपको वुजू करना लाजिम है, अनलेस अनलेस कि आपका पहले से वुजू है और वो चल रहा है, फिर तो आप उसी वुजू के साथ नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन जिसका वुजू नहीं है उसके लिए लाजिम है कि वो वुजू करे, वुजू के बगैर नमाज नहीं है। बात समझ आ गई? क्योंकि वुजू में अक्सर लोगों को बहुत यानी एक तंगी महसूस करते हैं, हालांकि आपको पता है ये भी दर्जात को बुलंद करने वाला अमल है कि इंसान मुश्किल हालात में, ऐसे हालात में जब दिल ना कर रहा हो, जब परेशानी हो वुजू करने में, तब भी वो वुजू करे। और वुजू में दो चीजें ऐसी हैं जो अक्सर हम जिनको निगलेक्ट करते हैं। एक नंबर वन, पानी बहुत ज्यादा जाया करते हैं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बहते दरिया पे भी हो ना तो फिर भी पानी जाया ना करो, यानी इतना पानी है। मिसाल के तौर पे आप में से कई लोग, हम ऐसे मुल्कों में रहते हैं हमें कोई पानी की अल्हम्दुलिल्लाह दिक्कत नहीं है, कोई पानी की कमी नहीं है और पानी का कोई बिल भी ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा, तो अब पानी चलाए रखो चलाए रखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फरमाया दरिया के किनारे भी बैठे हुए, यानी पानी की किल्लत नहीं है, तब भी तुमने इसराफ नहीं करना। और नबी अलैहिस्सलाम के खुद क्या मामला था कि एक मुद यानी 1.5 पाव पानी से वुजू कर लेते थे, और एक सा यानी 2.5 लीटर, आप लीटर की बोतल देख लें, अक्सर हमारे घरों के अंदर होती है कोई, ये सोडाज वगैरह पेप्सी ये वो लीटर बॉटल्स में आते हैं, आप उसमें देख लें 2.5 लीटर कितना होता है, आपको खुद पता चल जाएगा। इतने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुसल फरमा लिया करते थे। तो खुद अंदाजा कीजिए कि हम जब शीशे को देख रहे हैं, साथ टूथब्रश कर रहे हैं, साथ हम जो भी इधर उधर फोन को भी देख रहे हैं, और पानी चलता चला जा रहा है, तो ये दुरुस्त मामला नहीं है। इसमें कितना पानी जाया होता है और कितने लीटर पानी जाया हो रहा है इसका अंदाजा कीजिए, और हमें परवाह नहीं होती, जबकि हम देखें कितनी बड़ी एक सुन्नत का इनकार कर रहे होते हैं ये करके। और फिर इसके अंदर देखें दूसरी चीज कि नाक में पानी चढ़ाना जरूरी है। नाक में पानी चढ़ाने को हम उलमा तो ये कहते हैं कि कम से कम ये जो हड्डी है ना नाक की, इस तक जरूर पानी जाए। इसमें एक है इस्तिनशाक यानी पानी चढ़ाना, और दूसरा इसमें अमल है इस्तिनसार यानी नाक को झाड़ना। तो एक है चढ़ाना और एक है नाक को झाड़ना, जबकि हमारा पानी तो पहुंचता ही नहीं है आगे तक। ये भी एक कमी होती है जो हमारे वुजू के अंदर होती है, और इस चीज को बहुत एहतियात रखनी चाहिए कि हम पानी को नाक में चढ़ाएं ऊपर तक, ठीक है। अच्छा, एक इसके अंदर तरतीब रखनी भी जरूरी है। देखिए यहाँ पे आपको तरतीब बता दी गई ना, तरतीब रखनी भी जरूरी है कि हमारी तरतीब होनी चाहिए जब हम वुजू करें। एक और चीज इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ऐसे वक्फा नहीं होना चाहिए, पे दर पे होना चाहिए। जो हमारा वुजू है ना, एक के बाद एक यानी उसको धोना है, ऐसे नहीं है कि मिसाल के तौर पे आपने मसलन आपने सारे वुजू कर लिया था, आप पैर धोना भूल गए, आप बाहर आ गए, आप घूमे, फिर आपको फिर याद आया ओ वो मैंने तो पैर ही नहीं धोए, तो अब आप वापस गए आपने जाके पैर धो लिए, ऐसे नहीं हो सकता। एक शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था कि उसके इस तरह से खुश्क थे पैर, तो आपने फरमाया जाओ जाके दोबारा वुजू करो, ये नहीं फरमाया सिर्फ इतने से पैर धो लो, ठीक है। तो कब तक आप कर सकते हैं? अभी कभी ऐसे भी होता है, आधा वुजू किया था, किसी का फोन आ गया, फोन सुनने शुरू हो गए और बीच में बातें कर रहे हैं, फिर उसके बाद फोन बंद किया, तो फिर उसके बाद आप बाकी वुजू कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते आप। कब तक आप कोई उज्व धो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप बाहर आए, आपको याद आया, ओह मैंने पैर नहीं धोए, अभी आप बाहर आए ही थे, तो कितनी देर तक है कि हम दूसरा उज्व धो सकते हैं और कब नहीं धो सकते। आपके पास सिर्फ उतना टाइम है जितने टाइम के अंदर बाकी आपके जो पार्ट्स हैं जिस पे वुजू किया हुआ है वो गीले हैं, उस वक्त तक आप धो सकते हैं। अगर वो सूख गए तो इसका मतलब अब आप दोबारा पूरा वुजू करें, अब आप उसके ऊपर नहीं कर सकते। बात समझ आई कि नहीं? यानी अभी अगर मेरे बाकी उज्व सूख गए हैं, जहां पे मैंने वुजू किया था, बाजू वगैरह सब सूख गए हैं, तो अब मैं पैर नहीं धो सकती, अब मुझे पूरा नया वुजू करना है। अगर बाकी उस अभी गीले हैं, अभी मैं बाहर ही आई थी, मुझे याद आ गया, तो मैं वापस जाके अपने सिर्फ पैर धो सकती हूँ। ठीक है, ये बात समझ आ गई, उम्मीद है। इसी तरह वुजू की में ये चेहरे को पूरा धोना है, जो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, पूरा धोना है। इसमें कुल्ली भी आ गई, नाक में पानी भी चढ़ाना आ गया, ये सब, और मराफिक को भी इसमें शामिल करना है, ये भी सूखी ना रह जाए। तो ये आपको थोड़ी चीजें हैं जो वुजू की जरूरी हैं। और टखनों को भी इसी तरह, बाज दफा हम टखनों को सही से नहीं शामिल कर पाते, बाज दफा एड़ियों को सही से नहीं धो पाते, पानी तो धड़ाधड़ चल रहा होता है फिर भी पैर धुलते ही नहीं सही तरह, और बाज लोग तो सिर्फ हाथ ही फेर लेते हैं, तो ये सही नहीं है फिर। ठीक है, तो जब भी नमाज के लिए खड़े हो तो आपने प्रॉपर वुजू करना है। अच्छा, अब वह इन कुन तुम जुनुबा, लेकिन अगर तुम जुम्बी हो, जो हालत जनाबत कौन सी होती, पहले तो ये देखते हैं जुम्बी होना क्या है। देखिए, इस सेम ऐसी ही हमने आयत सूरत निसा में भी पढ़ चुके हैं, वहां पे भी मैंने आपको कई चीजें इसमें से बता दी थी। जनाबत क्या है? जनाबत है या तो मर्द को एहतलाम हो गया, उसकी मनी खारिज हो गई हो, या बीवी के साथ हम बिस्तरी में शौहर और मर्द मतलब मिले हैं, और मर्द का पार्ट औरत में दाखिल होना इसमें जरूरी है। अगर दखूल हो गया है तो फिर चाहे उसको एहतलाम हुआ या नहीं हुआ, उनको ये गुसल करना जरूरी है। इसी तरह औरत हालते हैज में, पीरियड्स आते हैं उसको, या उसको निफास है यानी बच्चा पैदा हो जाए तो उसके बाद जो ब्लड आता है तो जब वो खत्म हो जाता है, तो ये सारी जनाबत की हालतें हैं। ठीक है, तो जब तुम जनाबत की हालत में हो तो इसको कहते हैं, ये वाली जो जनाबत की हालत है यानी इसमें ये चारों चीजें आ गई, इसको कहते हैं हदसे अकबर। क्या कहते हैं? हदसे अकबर लिखते, हलवे वाली दाल और सा, हदसे अकबर, यानी ये वो नापाकी की हालत है जो बगैर गुसल के, आप इसमें सिर्फ वुजू नहीं कर सकते, ये बगैर गुसल के आप पाक नहीं हो सकते। हदसे अकबर इसको कहते हैं, बड़ी नापाकी है ये। ठीक है, एक है हदसे असवर, वो छोटी नापाकी है, उसमें आप वुजू कर सकते हैं। और वो कौन सी नापाकी है? जैसे आपने बाथरूम यूज किया है, टॉयलेट यूज किया है, या और कुछ चीजें हो सकती हैं कि आप उनमें यानी आप वुजू करके उससे हवा खारिज हो गई किसी की, या इस तरह, मतलब यानी वो ऐसी नापाकी है कि जो आप वुजू से दूर कर सकते हैं। लेकिन जो जनाबत की नापाकी है वो हद से अकबर है, उसके अंदर गुसल करना जरूरी है। और देखें, ये आपके दीन के मसाइल हैं, ये तहारत के मसाइल हैं, इनको इतनी डिटेल में अल्लाह ताला ने बताया है कुरान पाक में, क्योंकि हमारे दीन में तहारत का बहुत बड़ा मकाम है। तहारत के बगैर इबादत कबूल नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने रोजा रखना है, मिसाल के तौर पे आपने नमाज पढ़नी है, आप जनाबत की हालत में उस तरह से तो आप रोजा नहीं रख सकते, इस तरह से आप नमाज नहीं पढ़ सकते, तो आपको पाक होना जरूरी है। इसलिए हमारी इबादत इस पर डिपेंड करती है। तो इसमें शर्म को एक तरफ रखते हुए आप इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझें। ठीक है, फतहारू, तो तहारत हासिल करो। कैसे करोगे तहारत हासिल? आप जब जनाबत की हालत है तो तहारत कैसे हासिल होगी? वो अब आपको गुसल करने से सिर्फ हासिल हो सकती है। अच्छा, अब आप कैसे गुसल करेंगे? तहारत जब जना वैसे तो आप जो मर्जी शावर करते रहे, शीतराम से भी करते रहे, लेकिन आप जब जनाबत का गुसल करेंगे, अव्वल तो इसको अपनी आदत ही बना लें, तो इंशाल्लाह ताला आपको हमेशा ही आसानी रहेगी। क्योंकि फिर इंसान की जब आदत बन जाती है ना, तो फिर इंशाल्लाह उसको याद भी रहता है। और अगर आदत ना हो तो फिर आप आज सुनेंगे तो 1 महीने बाद जब दोबारा पीरियड से पाक होने लगेंगे तो फिर भूल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है गुसल करने का तरीका, इसमें क्या है, एक ही मैं आपको तरीका बताती हूँ। जैसे तो दोनों दो तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक तरीका बताती हूँ ताकि आपको याद रखना आसान हो जाए। आप जब गुसल करते हैं तो सबसे पहले इस्तंजा करेंगे, यानी अपनी प्राइवेट पार्ट से गंदगी को दूर करेंगे, चाहे हैज है, निफास है, या हम बिस्तरी है, आपने उसको धो लिया। धोने के बाद अब आपने जैसे वुजू करते हैं उस तरह वुजू किया, यानी वुजू की नियत करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें। और अब आप ये कहेंगे बिस्मिल्लाह मैं शावर में पढ़ूं, तो मुंह में पढ़ लें बिस्मिल्लाह, आपने वुजू शुरू कर दिया। अच्छा, हमाम में वैसे भी बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं, आपको टॉयलेट में नहीं बैठे तो हमाम है ये। अब आपने बिस्मिल्लाह करके जब आपने वुजू यहाँ कुल्ली कर ली ना, कर लिया बाजू को नहीं था कर लिया, अब जब मसा भी आप पहुंचे ना, जब मसा की बारी आई, मसा करते हैं ना, थर्ड स्टेप है ना मसा, तो जब आपकी मसा की बारी आई तो यहां पर आपने अब मसा नहीं करना, अब आप सीधा सर पे पानी डाल लेंगे और सर को अच्छी तरह रगड़े, शैम्पू करना है जो करना है, और फिर उसके बाद सर राइट साइड बॉडी की उसको धो लें, फिर लेफ्ट साइड बॉडी की उसको धो लें, आखिर में अपने पांव धो लें। तो ये तरीका आपका, इसमें आपकी ये जनाबत का गुसल है। आप चाहे पीरियड से फारिग हो रहे हैं, निफास से फारिग हो रहे हैं, हम बिस्तरी के बाद है, जो भी है, आपने इस तरीके के साथ खुद को पाक करना है। औरत को एहतलाम हो जाए या मर्द को, जैसे और सिर्फ मर्द को नहीं होता, औरतों को भी एहतलाम हो जाता है, तो औरतों को अगर वो गीलाहट महसूस करें कि वो सो के उठी हैं और उनके कपड़ा गीला है, तो और कोई वेट ड्रीम है, वो भी उनको भी इसी तरह गुसल करना। ठीक है, तो जब जनाबत की हालत होगी, अब समझ आ गई जनाबत की हालत कौन सी है, तो फिर इस तरह का गुसल करना जरूरी है। और इसके अंदर फिर तमाम बॉडी पार्ट्स के ऊपर पानी का पहुंचना जरूरी है। इसी वजह से आपको कहा जाता है नेल पॉलिश ना लगी हो, कहीं आटा ना ऐसा लगाओ, कहीं कोई ऐसी आपने चीज तो नहीं पहनी हुई जिसके नीचे पानी ना जा सकता हो, कोई ऐसी ज्वेलरी है, कोई ऐसी चीज है, हर जगह पे पानी पहुंचना जरूरी है। हाँ, ये है कि जब यानी औरत है, मर्द के साथ शौहर के साथ ताल्लुक कायम हुआ है, तो उसके बाद अगर सिर्फ इतना सा फर्क है दूसरे गुसल से कि उसके बाल अगर लंबे हैं, उसने चोटियां बनाई हुई हैं, तो अब उस वो बार बार खोले, हर दिन खोले, तो वो उसके चोटियों के ऊपर ही पानी उसके बह जाएगा, तो ठीक है। बाकी जब आपने पीरियड्स का गुसल करना, तो फिर पूरे बाल खोल के अच्छी तरह उनको यानी शैम्पू करें या जो भी, सर को भी धोना जरूरी है, फिर एक एक बाल तक भी पानी जाना जरूरी है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक बात समझ आ गई होगी। इन कुंतुम मर्दा औ अला सफर औ जा अहद मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुम निसा, ये चार हालतें बता दी गई। इन चार हालतों में आप मरीज हैं, आप बीमार हैं, पानी अगर आपने इस्तेमाल किया तो बीमारी बढ़ सकती है। ऐसे नहीं कोई भी बीमारी की बात नहीं, कुछ बीमारियों में तो पानी बल्कि अच्छा होता है यूज करना। मसलन बुखार है तो वो तेज बुखार हो जाए तो आप पानी के नीचे जाते हैं, आपका टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन कुछ बीमारियां बढ़ जाती हैं और बढ़ सकती हैं पानी इस्तेमाल करने से। औ अला सफर, या आप सफर पे हैं और पानी चाहे है भी लेकिन आप शावर नहीं कर सकते, या पानी ही नहीं है, ये भी हो सकता है। और इसके लिए आपको मैं एक हदीस भी बताती हूँ इसके बाद। और जा अहद मिनकुम मिनल गाइति, या कोई रफा हाजत से आए, अब ये हद से असगर है, ठीक है, हद से अकबर नहीं है, यानी टॉयलेट से आए, लेकिन उसको भी तो वजू करने की जरूरत है, अब नमाज पढ़नी तो क्या करे, पानी नहीं है कहीं भी। औला मस्तुम निसा, या तुमने औरतों से ताल्लुक कायम किया, यानी लामस्तुम निसा ये किनाया है, इशारा है इस बात की तरफ कि औरतों से ताल्लुक कायम किया बस। तो फिर अब क्या है, अब इन सारी सूरतों में अगर, वैसे तो आपको पता है आपने गुसल करना है या आपने वुजू करना है, सही है ना, लेकिन अब आपके पास अगर पानी ही नहीं है, इवन वुजू करने का पानी नहीं है, गुसल करने का पानी नहीं है, तो फिर क्या करें, फलम तजिदु मा फतयम्मम, तो तयम्मुम कर लो। तयम्मुम का मतलब क्या होता है, इसका डिक्शनरी मीनिंग है इरादा करना, कसद करना, इरादा कर लो किस चीज का, साईदन ऊपर जमीन के ऊपर के हिस्से का, तय्यिबन पाक। मिट्टी हम यहां पे लिख देते हैं लेकिन असल मतलब मट्टी नहीं होता, साईदन का मतलब है ऊपर का हिस्सा, यानी जमीन के जो ऊपर का हिस्सा, तो उस पे अमूमन मट्टी ही होती है ना पड़ी भी, तो इसलिए हम उसको कह देते हैं मट्टी। मगर हमेशा मट्टी जरूरी नहीं है, यानी आप जमीन के ऊपर के हिस्से पे, यानी वो रेत है, पत्थर है, बजरी है, कोई भी है ऊपर को, थोड़ी थोड़ी जब सीमेंट है उसके ऊपर भी मट्टी तो पड़ी ही होती है, तो वो, लेकिन वो पाक हो, तो उसका आप इरादा करें, यानी अब आपने तयम्मुम की नियत कर ली। फमसहू भी वुजूहिकुम व अईदीकुम में, फिर मसा करो अपने चेहरों का और अपने हाथों का हिस्से, ये अपने चेहरे और हाथ का मसा कर लो। क्या मतलब, यानी अब आपको तरीका बताया जा रहा है यहाँ पे कि आपने तयम्मुम कैसे करना है। और तयम्मुम पहले तो आपको बताया गया किन हालतों में तयम्मुम आप करेंगे, किन हालतों में करेंगे, जो ये आपको यहाँ पे बताई गई, यानी जब पानी ना मिले, या नंबर 2 पानी के इस्तेमाल से कोई नुकसान का खतरा है, मिसाल के तौर पे बीमारी बढ़ जाती है, या सख्त सर्दी के दिन में पानी गर्म करने का कोई, मिसाल के तौर पे अभी हमारे मुल्कों में भी कभी ऐसे होता है कि गैस ही नहीं आ रही होती, सख्त सर्दी है, गैस की लोड शेडिंग हो गई, अब क्या है, अब उस वक्त मतलब गुसल करना है, तो अब अगर अगर उस सख्त सर्द पानी के साथ आपने गुसल कर लिया तो बीमार हो जाने का खतरा है, नमोनिया हो जाने का खतरा है, तो उस वक्त भी तयम्मुम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि ऐसी किसी बात पे तयम्मुम कर लिया अब हमें शर्म आती है, हम जाके गुसल करेंगे तो फिर किसी को पता चलेगा, बाथरूम साथ नहीं है, बाथरूम जरा निकल के है, सब देखेंगे कौन ये इस वक्त गुसल कर रहा है, तो फिर तो हमें शर्म आती है, तो इसलिए हमने नहीं करना, ये नहीं, ये कोई तरीके नहीं है। इस तरह अगर डॉक्टर ने पानी के इस्तेमाल करने से मना किया, ये नहीं कि हम खुद ही सोच लें कि नहीं चलो अब मैं बीमारी हूं तो नहीं करती, सुस्ती आ रही बीमारी में, कई दफा हिम्मत ही नहीं होती इतनी बीमारी में, तो मैं चलो अब तयम्मुम वैसे ही कर लेती हूँ, तो नहीं ऐसे नहीं है। तो तयम्मुम के लिए भी कोई शराइत है। इसी तरह अगर पानी ऐसी जगह पे है कि मिसाल के तौर पे पानी बाहर से कहीं से जाके लेना है और बाहर कोई खतरा है, मसलन कोई दरिंदा बैठा हुआ है, बाहर गोलियां चल रही हैं, अल्लाह ना करे बाहर जंग हो रही है, अगर जाएंगे तो कोई गोली लगने का खतरा है, कोई कर्फ्यू लगा हुआ है, अल्लाह ना करे ऐसी कोई चीज है और पानी है भी नहीं, तो फिर आप तयम्मुम करें। इसी तरह अगर पानी खरीदना भी पड़ता है तो खरीद लें, लेकिन आप खरीद के उससे वुजू या जो भी गुसल करना है वो करें। ठीक है, अल्लाह ताला ने कितनी हमारे लिए आसानी कर दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने थोड़े पानी से हमें गुसल करके बता दिया कि इतने पानी से भी गुसल हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि बड़े टब भी हों हमारे पास तो फिर ही हम गुसल कर सकते हैं। तो अब आता है कि तयम्मुम हमने कैसे करना है, तयम्मुम का तरीका क्या है। एक तो ये कि तयम्मुम वुजू और गुसल दोनों के लिए एक ही तरीका है, अगर कोई जनाबत की हालत में है उसको पानी नहीं मिल रहा वो भी इस सेम तरीके से तयम्मुम करेगा, अगर कोई बाथरूम से आया है और उसको वुजू करना है पानी नहीं है फिर भी वो सेम तरीके से तयम्मुम करेगा। और उसमें क्या है, पहले आपने नियत कर ली, बिस्मिल्लाह पढ़ी जैसे आप वुजू के लिए करते हैं, फिर पाक मट्टी, देखिए मट्टी पाक होनी जरूरी इसलिए है, बाज दफा हमें तय्यबन, तय्यब वो चीज होती है जो पाक भी है, जिसपे तबीयत भी आमादा होती है, तबीयत भी उसको पसंद करती है, बाज दफा हमारी तबीयत कराहत कर रही होती, ऐसी जगह है जहाँ पे लोग अपने कुत्ते लेके फिरते हैं, वो कुत्ते वहीं पे सब अपना करते हैं, तो उस मट्टी को उठा के तो हम तयम्मुम करने से तबीयत कराहत करती, तो ऐसी फिर मट्टी को ना लिया जाए, साफ सुथरी पाक जगह की मट्टी को लेके आप बेशक एक डब्बी में रख लें अपने पास, तो उसके ऊपर फिर आपने दोनों हाथों को ऐसे जैसे आप फिर पूरे दोनों हाथ खोल लें और उसके ऊपर ऐसे जैसे ये देखें ऐसे पैट करें उसके ऊपर, यानी ऐसे मारें, ठीक है, और उसके बाद आपने उन हाथों को फूंक मारनी है, झाड़ लिया, या आपस में उनको ऐसे झाड़ लें या फूंक मार के उनको, यानी कि मट्टी लेके तो उसको मुंह पे मारने, उसके ऊपर फूंक मारें, या आपस में ये दोनों अंगूठों को ऐसे ऐसे आपस में करें, टकराएं दोनों अंगूठों को साइड्स, यानी हाथों की साइड्स को ऐसे ऐसे आपस में टकराएं तो मट्टी झड़ जाएगी ना, फिर उसको क्या करें, भी वो जू पहले हाथों को नहीं करना, पहले चेहरे पे फेरेंगे फिर हाथों पे, आप देखें कि जो इसमें यानी वुजू के अंदर आप सबसे पहले हाथ धोते हैं, पता है ना आपको, लेकिन इसके अंदर आप पहले चेहरे को करें, फिर उसके बाद आप अपने हाथों को ऊपर नीचे मल लें, बस दैट्स इट, हो गया आपका तयम्मुम। अब अगर तयम्मुम करके आपने नमाज पढ़ लिया, आप आगे गए वहां पे पानी मिल गया, अब क्या दोबारा नमाज पढ़े? नहीं, अब दोबारा नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, मगर आप अगली नमाज पढ़ने लगेंगे तो फिर जाहिर वुजू करेंगे। इसी तरह आपने गुसल की जरूरत थी, आपने नमाज पढ़ ली है, आप थोड़ी देर में पानी आ गया, आपके घर में पहले पानी नहीं आ रहा था, पानी कहीं से भी मिल ही नहीं रहा था, अब पानी आ गया, तो अब आप क्या गुसल करके दोबारा नमाज पढ़े? नहीं, अब दोहराने की जरूरत नहीं है, मगर हाँ गुसल कर लेंगे जाहिर, ठीक है। आप उम्मीद है ये सारे मसाइल अच्छे तरीके से आपको समझ आ गए होंगे। तो ये आयत उतरी कब? देखें, ये भी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के घराने से हमें ये खैर मिली कि इसका शाने नजूल जो है, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि मेरे गले का हार बैदा में गिर गया, यानी सफर में थे, रास्ते में एक जगह पड़ाव किया तो इनका हार गुम हो गया। अब हम मदीना में दाखिल होने वाले थे, यानी मदीना थोड़ी दूर रह गया, तो दाखिल होने वाले थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी रोकी और वहां पे यानी पड़ाव कर लिया, क्योंकि हार इनका गुम हो गया था। तो कहती है मेरी गोद में सर रख के सो गए, इतने में मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पास तशरीफ लाए और मुझ पर बिगड़ने लगे कि तुमने हार खो के लोगों को रोक दिया और मुझे कचोके मारने लगे, यानी उनकी ना जैसे अपनी बेटी को डांट रहे हैं और उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, तो कचोके मार रहे हैं उनके कमर में, तो जिससे मुझे तकलीफ हुई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल ना आ जाए इस ख्याल से मैं हिली नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागे और सुबह की नमाज का वक्त हो गया और पानी की तलाश की गई, पानी नहीं मिला, इस पर ये पूरी आयत नाजिल हुई। फिर हजरत उसैद बिन हुजैर कहने लगे, ए आले अबू बकर, अल्लाह ताला ने लोगों के लिए तुम्हें बाबरकत बना दिया, तुम लोगों के लिए बरकत ही बरकत हो, यानी अब आप देख लेना कि ये बरकत लोगों को मिली कैसे, कि इस तरह से मिली कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का जो हार गुम गया। अब इस वाकये से ही आप बड़ी चीजें सीखते हैं कि एक तो ये कि बाज दफा ना हमें जाहिर में कोई चीजें बड़ी वो लग रही होती है, मसलन है कि कहीं जाना है, आप लेट हो गए हैं और किसी की वजह से लेट हो रहे हैं, आप फिर हम उसको इतना सुनाते हैं, उसके ऊपर इतना बिगड़ते हैं, आप जरा जरा बिगड़े नहीं कि देखिए उनके वालिद को उनके ऊपर गुस्सा आ रहा है कि तुम्हारी वजह से, देखिए ना, अब आप किसी सफर से वापस आ रहे हैं, घर पहुंचने की हर एक को जल्दी होती है कि हम जल्दी से घर जाएं, लंबा सफर करके आए या थके हुए हैं सारे, अब एक बंदी है उनके हार की वजह से सब खड़े हो गए, तो ये हमारे जैसे लोग किस तरह का रवैया रखते हैं ऐसे मौके पे, सोचें खुद, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रवैया था। हम बिगड़ने लगते हैं, हम कहेंगे हम तो थक गए, हमें तो ये क्या है कितनी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने शफीक और मेहरबान थे इवन अपनी बीवियों पे, वरना अपनी बीवी को तो कह सकते थे, कितना डांट सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं फरमाया, सो गए और उठे और ये आया नाज़िल हो गई, सुभान अल्लाह। इसी तरह ये भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी तो देखा उसके बाद कि एक आदमी है और वो साइड पे बैठा हुआ और उसने नमाज नहीं पढ़ी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने क्यों नहीं नमाज पढ़ी? उसने कहा कि मैं जनाबत की हालत में हूं और पानी मुयस्सर नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम्हें तयम्मुम कर लो, ठीक है। तो ये तयम्मुम के लिए आपको आयात पता चल गई, अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी बड़ी मेहरबानी फरमाई, ठीक है। तो और आसान कितना इस तरीके को रखा, हालांकि इस तरीके से कोई ये नहीं कि इंसान वाकई कोई ऐसे वाकई पाक ही हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको किफायत कर दी, नहीं उसको काफी कर दिया, तयम्मम की रुख्सत दे के अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी कर दी, वरना कितनी मुश्किल होती। और आज तो फिर भी हमारे घरों के अंदर पानी वाफिर मिकदार में है, आप ऐसे जमानों का या आज भी ऐसी जगहों का सोचें जिन जगहों पे पानी ऐसे नहीं मिलता जैसे आपको मिल रहा, और दीन सबके लिए, अल्लाह ताला फरमाता है मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर कोई तंगी। इस रूल को याद रखें, ये रूल सिर्फ तयम्मुम के बारे में नहीं है, हर एक जगह पर आप ये याद रखिए कि अल्लाह ताला आपके लिए तंगी नहीं चाहता, अगर आप इस बात को याद रखेंगे ना, तो कभी ये जो डाउट्स आपके दिलों में आते हैं और ऐसे क्वेश्चन करते हैं, अल्लाह ने ये क्यों फिर फरमाया, यानी जैसे कि हमारी तो जान ही मुसीबत में डाल दी है, हमें हिजाब का हुक्म क्यों दे दिया, हमें औरतों को ही क्यों दिया, मर्दों को क्यों नहीं हिजाब का हुक्म दिया गया, उनको क्यों 4 शादियों का कहा गया, हमें हमें क्यों नहीं इजाजत इस तरह 1 से ज्यादा शादियां करने की, हमें क्यों नहीं ऐसे। देखें, अल्लाह ताला किसी के लिए कोई तंगी नहीं करना चाहता, वो तो सबका रब है, वो तुम्हारे लिए आसानी करना चाहता है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता। सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं हम, कोई यहाँ पे आ गया कोई तंगी नहीं चाहता। यानी अल्लाह ने मट्टी को पानी के कायम मुकाम बना दिया। उस वक्त के जो यहूदी थे उन्होंने इतना प्रोपेगेंडा किया इस बारे में, ये और इतना हंसे, इतना मजाक उड़ाया मुसलमानों का। और आपको पता है जिस सोसाइटी में आप रहते होते हैं वहां पे जो लोग होते हैं उनकी भी बाज दफा उनकी जो बातें होती हैं वो लोगों के ऊपर बहुत इफेक्ट करती हैं, और खास तौर पे जो पहले से ही लोग उनको बहुत बड़ा समझ रहे होते हैं कि ये तो बड़े अहले इल्म है, तो वो कहने लगे लो भाई एक तो पहले से ही नापाक, ऊपर से लेके अपने ऊपर मट्टी मल लो। अब देखो आज साइंस बताती है कि मट्टी में जो बैक्टीरिया है वो आपको जिस तरह से साफ करता है ना, वो कोई और चीज नहीं साफ कर सकती। इसीलिए जब कुत्ते का लोआब लग जाए किसी बर्तन में, किसी जगह पे, किसी कपड़े पे, तो आप देखें एक दफा उसको मट्टी से साफ करना है, फिर 6 दफा उसको पानी से धोना है, यानी 7 दफा धोना है आपने। तो वो मट्टी से धोने को क्यों कहा गया कि एक दफा मट्टी से धो बाकी 6 दफा पानी से। तो मट्टी है में आज उन्होंने बताया वो सलाहियत है कि जो कुत्ते के लार्वा में बैक्टीरिया वो किसी और चीज से नहीं दूर हो सकता सिवाय मट्टी के। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए ना उसमें भी हिकमतें हैं। अब अल्लाह ना करे देखें किसी कोई ऐसी सिचुएशन में फंस गया है, मिसाल के तौर पे आजकल लोग अस्पतालों में हैं जो जहां पे ना मट्टी है ना कोई ऐसी चीज है कि क्या करें, ना पानी तक वो जा सकते हैं, बाथरूम तक जाने की उनको इजाजत नहीं, वो बिस्तर से ही नहीं उठ सकते, हिल ही नहीं सकते, कोई उनको वहां पे वुजू कराने वाला नहीं, घर वाले उनके पास नहीं है, तो क्या करें। फिर वो ऐसे ही कसद कर लें, फिर इंसान की जितनी इस्तात है, वत्तकुल्लाह मस्तता, तुम अल्लाह ताला ने फरमाया तुम फिर तकवा इख्तियार करो जितनी तुम्हें इस्तात, फिर वो उसी पे मार लें जो बिस्तर की चादरें हैं या जो भी उनके करीब चीज है उसके ऊपर ही हाथ मार के, यानी नियत कर लें इस तरह के जैसे मैं तयम कर रहा हूं। तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर कोई तंगी नहीं करना चाहता, वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम, बल्कि वो तो चाहता है कि वो तुम्हें पाक कर दे, यानी तुम्हारे देखें उससे तयम्मुम करने से कोई इंसान पूरा पाक साफ तो नहीं हो जाना था, लेकिन अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारे एक दिल के अंदर इस चीज का एहसास हो जाए कि एक इंसान को होता ना कि मैं नापाक हूं, लेकिन तयम्मुम करने के बाद उसके दिल में एक ये बात आ जाए कि मैं अब पाक साफ हो गया हूं, अब मैं नमाज पढ़ सकता हूं, दिल की सफाई भी हो गई इसमें और इंसान मुतमईन हो गया, और मुतमईन होके वो अब अपनी इबादत करे। अब वो किसी ने गुसल करना था, अब वो उसको लगता है कि हाय मैं यानी हैज से निकली हूं और मैं कैसे, अब गुसल ही नहीं है तो अब बैठी नहीं है, कि नहीं जब पानी आएगा पानी मिलेगा तब मैं जब कहीं जाके नमाज करूंगी नहा के, अब जी मैं नहीं इसमें। तो भाई तयम्मुम करके आप नमाज पढ़ लें, आप पानी का क्यों इंतजार कर रहे हैं, अब उसके अंदर पूरा दिन गुजर गया 2-3 नमाजें तो वैसे ही चली गई, नहीं मैं कजा पढ़ लूंगी, नहीं आप उठे तयम्मुम कीजिए और नमाज पढ़िए। وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारे ऊपर अपनी नियमत को पूरी करते, यानी ये तुम्हें अहकामात ये सारे दे के, आपको मैंने बताया था सूरह मायदा आखिर की सूरतों में से है, अल्लाह ताला ने इसमें जितने भी अहकामात थे वो दे दिए, अल्लाह ने अपनी नियमत पूरी कर दी, तकमील कर दी इस दीन की, ये तरीके आपको सिखा के, ये अल्लाह की नियमत है, इनको नियमत समझ के लिए ठीक है, दीन इस्लाम भी नेमत है, ये अहकामात भी नेमत है। तो ये हिदायात आपको देकर अल्लाह ताला ने आपके ऊपर अपनी नेमत पूरी कर दी, अब आपको क्या चाहिए, तुम शुक्र अदा करो अब ठीक है, अब आपका काम है शुक्र अदा करना कि अल्लाह तूने हमारे ऊपर इतनी आसानी कर दी, इतनी, वरना यही कहा जाता कि पानी से ही आपने करना है तो पानी मुयसर ना होता, बीमारी बढ़ने का खतरा होता, तब भी इंसान को अगर यही करना पड़ता तो कितना मुश्किल होता। तो अल्लाह ताला की रहमतें हैं तुम्हारे ऊपर, इस पे शुक्र गुजारी करो। आपको पता है यहूदों नसारा के अंदर तयम्मुम की चीज नहीं थी, उनके अंदर ये अहकामात नहीं थे। ये अल्लाह ताला की खसूसी रहमत है इस उम्मत पे, तो इसलिए हम फिर शुक्र कैसे अदा करेंगे? फिर हम शुक्र ऐसे अदा करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखाई हैं उनको हम वुजू के बाद किया करेंगे। ये भी शुक्र का एक तरीका है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि वुजू के बाद कहो अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, तो आपने ये दुआ किया करनी, ये शुक्र गुजारी है। और भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं सिखाई, लेकिन वुजू के दौरान कोई भी कलिमात ऐसे नहीं, सिर्फ बिस्मिल्लाह करके शुरू करना है। वुजू के दौरान कई लोग सूरह कौसर पढ़ रहे होते हैं, कोई कुछ पढ़ रहा होता है, कोई चूम रहा होता है अपने अशहदुन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, चूम रहा है अपने ये हाथों को और फिर आंखों को लगा रहा है। ये कोई चीज सुन्नत से साबित नहीं है। कोई एक जगह भी है जहां पे ये लिखा हो? कोई ये ना कोई दुआएं हैं वुजू के दौरान की, वुजू के आखिर की हैं। अल्लाहुम्मा जालनी मिन तवाबीना मिन मुतताहिरीन, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वाली इस तरह से दुआ आखिर में तो है लेकिन वुजू के दौरान नहीं है। तो इसलिए इन चीजों से परहेज किया जाए कि जो हम नई नई बना के और फिर अंदर शामिल करते हैं। इसी तरह गर्दन के मसा का कहीं पे किसी हदीस में नहीं, और गर्दन के मसा को बीच में डाला हुआ है कि गर्दन का भी मसा करो। गर्दन के मसा का तो है ही नहीं, ना कुरान में ना हदीस में। ठीक है,